آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ आज के मुख्य समाचार में, विक्टोरिया ने रिकॉर्ड संख्या में दर्ज किए गए कोविड 19 मामलों के लिए AFL ग्रैंड फाइनल पर की गई पार्टियों को दोषी ठहराया, फेडरल सरकार ने श्रमिकों और व्यवसायों के समर्थन के लिए किए जाने वाले भुगतान को कम करने के अपने निर्णय का किया बचाव, कोविड 19 संक्रमण की डर की वजह से क्वींसलैंड को करनी पड़ी NRL ग्रैंड फाइनल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कटौती। अब समाचार विस्तार में, विक्टोरिया सरकार अपने वैक्सीन रोल आउट को तेजी से ट्रैक पर लाने के लिए फाइजर शॉट्स के बीच के समय को 6 सप्ताह की जगह 3 सप्ताह तक कर देगी। राज्य में आज 1438 स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले और 5 मौतों के दर्ज होने के चलते यह परिवर्तन सोमवार से ही लागू हो जाएंगे। राज्य के कोविड 19 टेस्टिंग कमांडर जेरोइन वाइमर का कहना है कि नए दैनिक संख्या में 50% में से एक तिहाई मामलों में वृद्धि AFL ग्रैंड फाइनल वीकेंड पर लोगों के मेल जोल बढ़ने की वजह से हुई है।
The contact traces tell us that there have been significant numbers of social gatherings on Friday and Saturday over a long weekend. Grand final parties, other social gatherings, barbecues, backyard visits. And all of this has generated significant additional caseload. So around 1/3 of our cases today, we think are due directly to those different types of social gatherings as people have dropped their guard and decide that it's a grand final weekend, it's a long weekend, we deserve a bit of a payback.
प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने विक्टोरिया के लोगों से आग्रह किया है कि वे तब तक घर पर रहने के आदेशों का पालन करते रहें जब तक कि अगले महीने के अंत में लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। फेडरल और राज्य सरकार आपस में मिलकर अगले 6 सप्ताह के लिए लॉकडाउन के तहत पीड़ित व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि विद्यार्थी प्लान से 1 सप्ताह पहले ही स्कूल में ऑन साइट लर्निंग पर लौट आएंगे। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन का कहना है कि राज्य उम्मीद से पहले अपनी 70% डबल खुराक टीकाकरण दर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से समय से पहले वापसी की अनुमति दी जा सकती है।
This is a safe way of resuming schools, but the staggered approach will remain in place. So the education team have been dealing with the health team for some time now, and whilst we can bring that week forward, the start date forward by a week, which I know is welcome relief to students, teachers and families, the staggered system, the staggered recommencement will still be in place.
लेकिन New South Wales के कुछ क्षेत्रीय हिस्सों में कोरोना वायरस के जोखिम के रहते स्टे एट होम के आदेशों को 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाएगा। क्वींसलैंड में 6 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मामले दर्ज किए हैं, जिसके चलते राज्य में फिर से कोविड 19 प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इनमें से 4 मामले एक विमान उद्योग क्लस्टर से जुड़े हैं। राज्य में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जेनेट यंग का कहना है कि प्रकोप को रोकने के लिए स्टेज 2 प्रतिबंध अब से लागू होंगे।
So we know homes are the highest risk, so that's why we're bringing back that maximum of 30 people in anyone's home. And we know gatherings like weddings and funerals, so that's why there's that limit of 100 there. Plus we need people to return to being seated when they're eating and drinking, because it's when you get up and wander around that it's hard to know who you've been in contact with.
प्रीमियर अनस्तासिया पेलेशे का कहना है कि राज्य में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए कोविड 19 परीक्षण और टीकाकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। फेडरल ट्रेजर ऑफ जॉश फाइडनबर्ग ने राष्ट्रीय कोविड 19 टीकाकरण लक्ष्य तक पहुंचने पर सरकारी समर्थन में कटौती करने के निर्णय की सफाई दी है। देश की 80% आबादी की पूरी तरह से टीकाकरण हो जाने के बाद से अपनी नौकरी और व्यावसायिक सहायता भुगतान खोने वाले श्रमिकों के लिए आयोजित डिजास्टर फंड्स या आपदा भुगतान बंद हो जाएगा। श्री फाइडनबर्ग का कहना है कि यह निर्णय आर्थिक और स्वास्थ्य सलाह पर आधारित है। उन्होंने सभी राज्यों से COVID-19 लॉकडाउन को समाप्त करने का आग्रह किया।
Our expectation is by the time the COVID disaster payment has ended and that the business support payments have ended, that we will be up for a bill of more than $20 billion. That's what we're expecting. And so the cost to the taxpayer continues to rise from the economic impact of the lockdown.
लेकिन ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार को चेतावनी दी है कि उन्हें व्यक्तियों और व्यवसायों के समर्थन में दिए जाने वाले भुगतान को बंद करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष में विक्टोरिया में पारिवारिक हिंसा की घटनाओं में लगभग 6% की वृद्धि हुई है, हालांकि कुल अपराध दर में गिरावट आई है। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक हिंसा के मामले में 5.9% की बढ़त सबसे ज्यादा तब महसूस की गई थी जब पिछले साल के अंत में राज्य में COVID-19 प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। नवीनतम अपराध के आंकड़ों के अनुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों को तोड़ने वाले लोगों की वजह से अपराधों में 457% की वृद्धि देखी गई है। कुल मिलाकर महामारी के दौरान आपराधिक घटनाओं की संख्या में 6.6% की गिरावट आई है। स्लोवेनिया में ओवरसीज नाव और स्लोवेनिया की सरकार ने एक 20 वर्ष की महिला की मृत्यु होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा निर्मित COVID-19 टीकों के उपयोग को निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री यानेस फोकलुकर का कहना है कि जैब लगने के 2 सप्ताह बाद इस महिला की स्ट्रोक से मृत्यु हो गई थी। विशेषज्ञ पता लगा रहे हैं कि क्या महिला की मृत्यु और टीकाकरण में कोई लिंक है। टीकाकरण के प्रभारी सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोयाना बेयोविच का कहना है कि यह सिर्फ एहतियात बरतने के लिए किया जा रहा है।
We are all shaken and I wish to express my condolences to the family of the deceased. We concluded at the session of our task force that this incident might have been connected to vaccination and we decided to temporarily halt all vaccination with this particular vaccine. We need to halt it until we get more information about the incident so we can decide later what we are going to do and how to use this vaccine in the future.
स्लोवेनिया की लगभग 2 मिलियन आबादी यानी कि 48% जनसंख्या को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। उधर भारत में ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 60 साल और उससे अधिक उम्र के तकरीबन 10.9 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीके की पहली खुराक मिल चुकी है और तकरीबन 5.58 करोड़ लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। अब मुद्रा दर की जानकारी में, आज के दिन अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 72 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.31 रुपये है। खेल के समाचारों में, क्वींसलैंड ने के नवीनतम कोविड प्रकोप के कारण रविवार के NRL ग्रैंड फाइनल के लिए भीड़ की क्षमता 75% तक कम की जा रही है। इस कटौती की वजह से रग्बी लीग के अधिकारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 52,000 परिवारों में से 1/4 को रिफंड दिया जाएगा जिन्होंने पेनरिथ और साउथ सिडनी के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए टिकट खरीदे हैं। यह मैच ब्रिस्बेन में खेला जाने वाला था। प्रीमियर अनस्तासिया पलिशेक का कहना है कि आयोजकों के लिए पास और कोई चारा नहीं बचा है।
It's going to be disappointing for people, but we have to take the health advice. The health advice is to move to stage 2. Stage 2 says 75% capacity. That's what it will be.
अगले कुछ दिनों में दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में मजबूरन लॉकडाउन लगने की संभावना है, जिसके चलते टाउन्सविल मैच की मेजबानी करने के लिए स्टैंड बाय पर है। उधर भारत के स्पोर्ट्स में, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। RCB ने 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज की। बैंगलोर के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने 30 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए और नॉट आउट रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज 30 सितंबर से डे नाइट टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। ये मैच क्वींसलैंड के करारा ओवल में खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने बिना कोई विकेट खोए 93 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 57 और शेफाली वर्मा ने 31 रन बनाए। और अब कल के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार पर्थ में बौछार होगी, न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 20 डिग्री। एडलेड में हल्की हल्की बारिश होगी, न्यूनतम तापमान 11 अधिकतम तापमान 18। मेलबर्न थोड़ी बहुत बारिश होगी, न्यूनतम 12 और अधिकतम 20 डिग्री। कैनबरा में भी बौछार होगी और तापमान 8 और अधिकतम तापमान 19। सिडनी में 1-2 बौछार होगी, न्यूनतम 14 और अधिकतम 24 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछार के साथ तूफान की संभावना, न्यूनतम 17 और अधिकतम 26 डिग्री। डार्विन में भी बौछार की संभावना, न्यूनतम 25 और अधिकतम 33 डिग्री। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बरसात की संभावना और शाम को आंधी के साथ बादल गरजने की आशंका है। अधिकतम तापमान होगा 32 डिग्री। इसके साथ ही आज के समाचार यहां समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।